हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रात के वक्त रूहान, अनाही और राविया, अनंत चारों लोग ही बाहर डिनर करके आने वाले थे, इसलिए घर काफी सूना सूना लग रहा था। रूही भी कब से रूहान का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ सबसे ज्यादा सिर्फ रूहान को जानती थी, क्योंकि वो अक्सर रश्मि के घर और क्लिनिक आता जाता रहता था। उसे वहां ना देखकर रूही थोड़ी बेचैन थी। उसने निवेदिता के पास बैठते हुए कहा, आई रूहान कब तक आएगा? और मुझे भाभी से भी मिलना था, मैं उन लोगों की शादी में भी नहीं आ पाई थी। निवेदिता ने प्यार से रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा पता नहीं कौन सा वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं, इसीलिए वो लोग नहीं आ पाए। परिणाम दो दो भाभी हैं तुम्हारी, जिनसे तुम अब तक नहीं मिली हो। रूही ने विवाह के बारे में सोचते हुए कहा, वैसे आंटी बुरा मत मानना, पर ये वाली भाभी तो पता नहीं कौन से एटीट्यूड में रहती है, बात ही नहीं करती है। मैं आते ही उनसे हेलो कहा था, तभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और अब थोड़ी देर पहले भी मुझे एक हेल्प चाहिए थी तो मैं उनके कमरे में गई थी, क्योंकि जो कमरा हमें दिया है फोहन के कमरे के जस्ट बगल वाला ही है, तो भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बिल्कुल किसी साइको की तरह लेटी हुई थी। क्या वो दोनों भाभी भी वैसी ही हैं जो किसी से बात नहीं करती हैं? विवाह के बारे में सोचते ही निवेदिता का भी चेहरा उतर गया। उसने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, पहले हमारी प्रिया ऐसी नहीं थी, ये तो वक्त और हालातों ने उसे ऐसा बना दिया है। वो तो सबसे ज्यादा हंसमुख और चंचल थी, इतनी बोलती थी कि लोगों के कानों से खून बहने लग जाए, और एटीट्यूड फोटो से पता भी नहीं कि होता क्या है, बहुत इनोसेंसी है। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से सुनाऊंगी तुम्हें। उसे मिसअंडरस्टूड मत करना, बस उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करना। कभी भी उससे गुस्से में बात मत करना, हमेशा प्यार से बात करना, और अगर वो कहे कि मुझसे दूर चली जाओ तो उससे दूर हो जाना। उसे सफोकेशन होने लगती है और दम घुटने लगता है। आई विश वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और पहले वाली बेहा बन जाए। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी फेवरेट भाभी कौन सी है, देखना तुम जरूर उसी का नाम लोगी। फिलहाल रूही को निवेदिता की बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था निवेदिता विवाह की तरफदारी कर रही है, क्योंकि विवाह उसकी सबसे प्यारी बेटी की पत्नी है, इसलिए उसने उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए कहा, हाँ आंटी डोंट वरी, मैं क्यों ही उनसे गुस्से से बात करूंगी, इनफैक्ट मैं बात ही क्यों करूंगी, हम डिनर कर लेते हैं ना, ठंडा हो रहा है। वो लोग जैसे ही डिनर करने बैठे, ठीक उसी वक्त वेदांत भी तेज कदमों से घर के अंदर आए। वो जल्दी से वॉश बेसिन के पास जाते हुए एक सर्वेंट को आवाज लगाकर बोला, शर्मिला जल्दी से विहा मैडम का डिनर एक प्लेट में लगाओ, आज मुझे आने में 5 मिनट देर हो गई, कहीं वो सो ना जाए। इतना बोलकर वेदांत जल्दी जल्दी अपने हाथ मुंह धोने लगा। उसे ऐसा करता देख रूही ने अपने मन में कहा, सिद्धांत भाई कितने अच्छे हैं, इसके बावजूद भी उनको इतनी बुरी पत्नी मिली है, चुप बिल्कुल किसी नौकर की तरह भाई से काम करवाती है। इतना बोलकर उसने मुंह बनाया और फिर अपना खाना एंजॉय करने लगी, तो वही पार्थ भी बहुत अच्छे से सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसे ये माहौल देखकर ये तो समझ आ गया था कि विवाह के साथ सच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। वेदांत फिर जल्दी से हाथों में खाने की प्लेट लिए लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों से विवाह के कमरे में गया। करीब 15 मिनट बाद ही रूही और पार्थ दोनों का खाना भी हो चुका था, इसलिए वो दोनों भी वापस तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ आने लगे। वहां आते ही रूही की आंखें फैल गईं, क्योंकि वेदांत अब भी विवाह के कमरे के सामने खड़ा विवाह के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो बार बार उसे आवाज लगा रहा था कि टोमैटो दरवाजा खोलो, पर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिस पर रूही ने इस बार गुस्से में कहा, भाई अगर उसे ही आपकी कोई परवाह नहीं है तो आप क्यों उनकी परवाह कर रहे हो, ऐसी कोई पत्नी भला करती है अपने पति के साथ, आप अभी अभी काम से वापस आए हो, थके हुए हो, आपने खाना भी नहीं खाया है, आते ही आपके मुंह पर सिर्फ उनका नाम रहता है, उनकी फिक्र रहती है, और अभी कैसे दौड़ते हुए उनके लिए खाना लेकर आए हो, सिर्फ 5 मिनट लेट हुए थे और उन्होंने आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, सीरियसली कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मुझे तो ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके इतना बोलते ही दरवाजा खुला, सामने विहा खड़ी थी। उसने बड़े ध्यान से रूही के चेहरे को देखा, तो वहीं रूही भी उसे ऐसे देखकर थोड़ा हड़बड़ा गई। रूही ऐसे किसी के मुंह पर उसकी बुराई नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इंसान जब उसे देखा है तब तो उसे अनकंफर्टेबल लगने लगता है, तो वहीं वेदांत ने गुस्से में कहा, प्लीज रूही हम दोनों के बीच मत बोलो, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, इसमें टोमेटो कहां से बुरी हो गई, बुरा तो मैं हुआ ना, कितना डेट हूं कि मुझे बोलती रहती है कि चले जाओ, उसके बाद भी मैं इसके पास आ जाता हूं, और तुम जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गई है,
और अब तो टोमेटो ने दरवाजा भी खोल दिया है, तो मैं अंदर जा सकता हूँ। विहा ने ऊपर से नीचे तक रूही को देखते हुए धीरे से कहा, तुम बहुत क्यूट हो, क्या नाम है तुम्हारा? रूही की आंखें हैरानी से फैल गईं। यहाँ वो उसे लड़की की बुराई कर रही है और वो उसे क्यूट बोल रही है। विहा की आवाज बच्चों जैसी थी, जिसे सुनते ही रूही भी हैरान रह चुकी थी। उसने जल्दी से कहा, मेरा नाम रूही है, और क्या आप मेरी उम्र की हो? वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रूही बेटा, ये बस 21 की होने वाली है। ये सुनते ही रूही मुस्कुराई और फिर जल्दी से विहा की तरफ अपना हाथ करते हुए बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? विहा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर कमरे के अंदर चली गई। उसे ऐसा करता देख वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर रूही की तरफ देखा, जिसका चेहरा एक बार फिर मायूस हो चुका था। वेदांत ने जल्दी से कहा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, वो फिलहाल बहुत डिप्रेशन वाली फेज में है। उसका मन करता है कि वो तुमसे बातें करे और तुम्हें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी दे, पर वो जब भी बोलना शुरू करती है उसे रोना आ जाता है। उसका दिल बहुत भारी हो चुका है, ऐसा लगता है वो खुद खुद कर जी रही है, इसलिए वो अब दोस्त भी नहीं बनती है। कभी मैं बहुत आराम से तुम्हें बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ था, अभी तुम जाओ सो जाओ, रूही ने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। आई एम सॉरी भाई, अगर मैंने आपको और भाभी को हर्ट कर दिया हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पार्थ ने एक झटके से रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? वेदांत भाई तुम्हें कितनी बार बोल चुके हैं कि जाकर सो जाओ, चलो यहाँ से। इतना बोलकर पार्थ उसे लगभग खींचते हुए वहां से ले जाने लगा, तो वहीं वेदांत भी अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से अंदर गया और फिर अंदर जाकर खाने की प्लेट को बेड पर रखा और फिर तेज कदमों से आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। उसके बाद वो विहा के सामने बैठकर उसे प्लेट में रखा केक दिखाते हुए बोला, देखो टोमेटो, इस पर भी मैंने फ्लावर बनाया है, क्योंकि आज रोज डे है ना, अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। इतना बोलकर वेदांत ने उसे चम्मच से केक खिलाना शुरू किया। विहा भी बहुत आराम से केक खा रही थी, जो कि वाकई बहुत लाजवाब बना था। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैंने दोपहर में बनाया था, उसके बाद इसे फ्रिज में रख दिया था, और फिर जब मैं बाहर गया तो मुझे पार्थ रूही मिल गए, इसके बाद मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे तुम्हें केक भी खिलाना था। विहा ने बेड पर रखा वो फ्लावर उठाकर वेदांत के सामने करते हुए कहा, इस पर कहाँ लिखा है टोमेटो, मुझे दिखा नहीं।
वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर उसे फ्लावर को अपने हाथ में लेते हुए धीरे धीरे उसके पेटल्स को खोलने लगा, तो पता चला कि ये पिंक फ्लावर अंदर से व्हाइट कलर का भी था, ऐसे बोल सकते हैं कि एक 2-in-1 फ्लावर का। फिर उसने बीच वाली पेटल को खोलते हुए कहा, देखो यहाँ लिखा हुआ है टोमेटो। उसे देखकर विहा ने वापस वो फ्लावर अपने हाथ में ले लिया और बेहद ध्यान से उसे देखने लगी। वेदांत ने भी उसे खाना खिलाना जारी रखा।